लंकेश्वर, धर्म और अर्थ के तत्व को जानने वाले बड़े गंभीर राजा हो, दूत को मारना नहीं चाहिए। दूत को मारने से सारी प्रजा के अंदर और सब राजाओं के अंदर आपका यश धूमिल हो जाएगा। संतों ने भी कहा है कि दूत का वध नहीं करना चाहिए। दूत अपने तरफ से बात बोलता है, बोलने दीजिए। उसने अशोक वाटिका कैसे खत्म कर, अशोक वाटिका कैसे उजाड़ी। देखो ये दूत, ये कोई ये बानर है। बानर वृक्षों को नष्ट करता है, इसका स्वभाव है। या तो आप आपके राक्षस, आपके राक्षस जो रक्षक थे वो पहले से ही सावधान होते, नहीं सावधान हुए तो महाराज इसको आप मार नहीं सकते। क्यों? बानर है ये, तो मूड है। आप तो मूड नहीं हो ना, समझदार हो। इसलिए अशोक वाटिका को उजाड़ने का दंड आप मृत्यु दंड दूत को नहीं दे सकते। आप धर्म अर्थ को जानने वाले और लोक परलोक में श्रद्धा रखने वाले, आप ऐसा पाप करते हो। ये पाप तो कोई पराक्रमहीन होता है, उत्साहहीन होता है, वही तो कर सकता है। यदि आपको कुछ करना ही है तो आप राम और लक्ष्मण को यहाँ पर लाओ। राम और लक्ष्मण को यहाँ लाकर आप कैद खाने में डालो, तब तो कोई बात ही बने इनके ऊपर। ये तो राम और लक्ष्मण का बेचारा दूत है, इसके ऊपर आप किसी प्रकार का प्रहार मत करो। मैं आपको खुद के लिए बोलता हूँ, आपके लिए दूत मारने योग्य नहीं होता। और देखो, इसमें आपका एक बहुत बड़ा राजनीतिक नुकसान भी है। आपका कितना बड़ा वैभव, कितना बड़ा आपका राज। यदि दूत वहां राम जी के पास नहीं पहुंचा और आपने इसको पहले ही मार दिया, तो राम को कौन जाकर कहेगा कि लंका का ऐसा वैभव, लंका का ऐसा ऐसा जो है, लंका का राज्य, ऐसे सूरवीर, ये लंका का वैभव कौन बताएगा? मेरी समझ में तो आप इसको छोड़ दो। ये राम के पास जाएगा, राम डर जाएगा और राम डर करके और वो वापिस उधर ही रह जाएगा। आपसे प्रतिशोध की भावना नहीं रखेगा, अन्यथा महाराज उसके मन में सीता हरण का प्रतिशोध तो है ही। अतएव इसको आप किसी प्रकार से मारिए मत, जहाँ तक हो सके ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा आप इसका अंग है वो अंग भंग कर सकते हैं। अच्छी बात है, ठीक है विभीषण, तुमने ठीक बात कही। दूत को मारना तो नहीं चाहिए, क्योंकि दूत वाक चंचलता से भरा हुआ होता है। दूत के अंदर वाणी में चंचलता बहुत रहती है। ये तो अवगुण या गुण उस दूत में रहता ही है, उस बात का बुरा भी नहीं मानना चाहिए। ठीक है, मेरे समझ में एक बात आ रही है। बंदरों को अपनी पूंछ बहुत पसंद है और वो पूंछ उनको अपने आभूषण के समान लगती है। अतः मेरे विचार से इस हनुमान की पूंछ को नष्ट कर देने और तलवार आदि से नष्ट नहीं करना, क्यों उसको एक झटके में नष्ट हो जाएगी? नहीं, इसको धीरे धीरे जला जला करके करो, थोड़ी थोड़ी जलती रहेगी पूंछ, ये दुख पाता रहेगा, जलती रहेगी दुख पाता रहेगा, ऐसे इसकी पूंछ को जलाने का यत्न करो। तो कहा कि महाराज इतना विशाल शरीर वाला बानर है, इसके लिए तो पूंछ जलाने के लिए तो बहुत सी सामग्री लानी पड़ेगी, तो ले आओ भाई। तो लाने के लिए तो समय चाहिएगा, अच्छी बात है। अब भाई हनुमान जी महाराज के पूंछ के जलाने की तैयारी हो रही है और उसमें कम से कम 20-22 घंटे तो लग ही जाएंगे। इसलिए अब यहाँ आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। वाल्मीकि रामायण के सबसे गूढ़तम प्रसंग में अपने लोगों का प्रसंग चल रहा है। वाल्मीकि रामायण से हमें अनेक प्रकार की संस्कृतियों का ज्ञान होता है, अनेक प्रकार के धर्मों का ज्ञान होता है, अनेक प्रकार के व्यवहारों का ज्ञान होता है, जीवन में रहन सहन में कैसे हम लोगों का जीवन होना चाहिए इसका ज्ञान मिलता है, राजनीति में किस प्रकार की भावना हो ये ज्ञान मिलता है, माने मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए जिस ज्ञान की आवश्यकता है वो वाल्मीकि रामायण में खूब अच्छे ढंग से बताया गया है। हनुमान जी महाराज लंका में पहुंचे, सीता जी के दर्शन किए और सीता दर्शन के पश्चात उन्होंने गंभीरता से विचार किया कि दूध का क्या काम होता है, केवल स्वामी ने कह दिया उतना ही काम करना या उस कार्य के सहायक और कितने कार्य हो सकते हैं उनको भी करना। इन सब बातों का हनुमान जी ने खूब विचार किया।